أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا صلوات مريم محمد آل محمد بعد عزیزان مسلمان یہاں کی ہماری یہ پہلی مجلس ہے آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا اس دنیا میں نہیں ہے ان کو یاد کرتے ہوئے اور شہداء ملت جعفریہ کو دو نام خاص طور پر لے رہا ہوں کیونکہ ان کی نسبتیں ہمارے لیے بڑی ہیں ایک شہید مبارک کاظمی صاحب اور ایک شہید علی اکبر کمیلی اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا یہ گزارش ہو رہا ہے آپ سے کہ آگے بہت جگہ ہے پیچھے بہت مجمع ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیں جوان اٹھ کے آگے آ جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی بزرگ بے شک اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں آگے بہت جگہ خالی اور پیچھے ماشاء اللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے بلند آواز سے درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد علی اللہ جزاک اللہ اب اس سے ذرا بہتر وہ ماحول اچھا ہو جاتا ہے اب جگہ بیچ میں گیپ نظر آتا ہے اچھا نہیں رکھتا تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں سورہ مائدہ کی 57 آیت پانچواں سورہ قرآن مجید کا ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء یہ پوری آیت ہے 57 آیت سورہ مائدہ کی کہ اے مومنو اے ایمان لانے والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا کبھی بھی ان سے دوستی نہ کرو یا انہیں اختیار نہ کرو یا انہیں اپنا سرپرست نہ بناؤ یا انہیں اپنا بڑا نہ بناؤ جو تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ہزوم و لعبہ مذاق بھی اڑاتے ہیں مسخرپن کرتے ہیں اور انہیں بازیچہ بنائے ہوا ہے کھیل بنائے ہوا ہے دین کو ہزوم و لعبہ ایک تو مسخرپن کرتے ہیں تمہارے دین کے ساتھ اور دوسرے لعب لہو العب جس کو آپ کہتے ہیں نہیں کھیل بنائے ہوا تمہارے دین کو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ایک تو وہ صاحبان کتاب جن پر تم سے پہلے کتاب بھیجی گئی وہ ایسا کرتے ہیں والکفار اور یہ کفار اولیاء خبردار انہیں اپنا سرپرست نہ بنانا اولیاء بعد میں ہے یہ اولیاء کا لفظ پہلے بھی وہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء یہ اولیاء بعد میں کہ ان کو کبھی اولیاء نہ بنانا سرپرست نہ بنانا کن لوگوں کو ایک تو وہ صاحبان کتاب میں سے جو تمہارے دین کا مسخرہ بناتے ہیں مذاق بناتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں دوسرے کفار کو کبھی اپنا ولی نہ بنانا بس معلوم یہ ہوا کہ ولی انہیں بھی بنایا جا سکتا ہے یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ولایت وہاں بھی جا سکتی ہے یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اچھے لوگوں کو بھی مل سکتی ہے اور مت گھبرائیے برے لوگوں کو بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوا نا کفار اولیاء یہی اولیاء کا لفظ ہے کفار کو اپنا اولیاء نہ بنانا یعنی کچھ لوگوں نے بنایا ہے نا بھائی اپنا سرپرست بنایا ہے اور آسان کر دیں سورہ بقرہ وہ تو آپ کو یاد ہی ہے آیت الکرسی میں اس کو پڑھتے ہیں آپ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور اللہ انہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے اور وہ کفار ولی ہیں اولیاء ہیں والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء ان کے بڑے ان کے سرپرست ولی کی جمع ہے اولیاء والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت ان کے اولیاء کون ہیں طاغوت ہیں عنوان تو آپ نے پڑھ لیا نا ہمارا کیا مقامات ہے ولایت اب پہلے یہی دیکھنا ہے کہ یہ ولایت کا مفہوم ہے کیا آخر हत्ता कि कुरान मजीद में शैतान के लिए भी आया कि जिन लोगों ने शैतान को अपना वली बना लिया और उसके साथ हो गए। भैया आखिर मसला क्या है, ये विलायत क्या चीज़ है, इसके मकामात क्या क्या है, कि अल्लाह भी वली है फिर किसी जगह वो आपके लिए तो आयत ज़ाहिर है कि बच्चे बच्चे को याद है, नहीं याद तो याद होनी चाहिए। अब इससे बड़ी आयत कि एक जगह हश्र कर दिया, विलायत को कहत कर दिया कि इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युक़ीमुना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिउन। बस वली सिर्फ ये हैं, अल्लाह, उसका रसूल, और वो वली है कि जो ईमान भी लाए और जिन्होंने नमाज भी पढ़ी और जिन्होंने हालत रुकू में ज़कात भी। अब देखिए विलायत एक जगह सिर्फ तीन के लिए, बस यही तीन वली हैं और कोई वली नहीं है, और कहीं आ रहा है वो कुफार भी वली हैं, शैतान भी वली हैं, और फिर मोमिनीन के लिए क्या, वल मोमिनून अबाज़ुहुम औलिया बाज़, मोमिनीन भी एक दूसरे के वली हैं, इन्नल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़, और कहीं दोनों का जिक्र के मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे के वली हैं, लफ्ज़ वही आ रहा है वली, ठीक है ना, हर जगह। अब आखिर इसको कैसे हल किया जाए कि भाई विलायत है क्या, कोई कह सकता है कि तो विलायत तो माँ बाप को भी है, विलायत जो है वो तो मोमिनीन को भी एक दूसरे पर हासिल, अच्छा हत्ता कि विलायत आपको खुद अपने ऊपर भी है हासिल है, कि विलायत की एक किस्म क्या है कि खुद इंसान को अपने नफ्स पर वो विलायत हासिल है। बस ये वली का माना क्या है, आज तमहीदी मजलिस है ना, वली के माने रख देंगे आपके सामने, अक्साम विलायत पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और भी बताएंगे कि विलायत की कितनी अकसाम और आला तरीन विलायत क्या है। वो विलायत कौन सी है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने हस्र किया है, यानी महदूद किया है, महसूर किया है कलमा हस्र के साथ के बस ये वली हैं, इनके सिवा कोई वली नहीं, माबूद इतने सारे औलिया का तो तूने खुद जिक्र किया कुरान मजीद में, तो फिर ये महसूर कैसे, बस मालूम हुआ कि विलायत की अकसाम हैं, विलायत के मकामात हैं, जो विलायत का मकाम आए इन्नमा में बताया जा रहा है वो विलायत कुछ और है, आम इंसान को मिली हुई विलायत कुछ और है, मोमिनीन की विलायत कुछ और है, मोमिनीन के दुश्मनों के पास भी एक विलायत है वो कुछ और किस्म की है, तागूत की विलायत और है, शैतान की विलायत और है, हत्ता के फिरौन को भी कहा गया और उसके हवारियों को भी कहा गया, उनकी विलायत कुछ और है, सब अलग अलग। बस ये मादे वली जो कसरत से इस्तेमाल हो रहा है कुरान मजीद में, इसी पे सारा झगड़ा है। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को बड़ी माजरत क्या समझ में नहीं आता, लिहाजा उनके लिए भी ज़रूरी ये बात समझाना कि है क्या विलायत, किस चीज़ को कहा जाता है ये मादे वली या विला, जिससे ये निकला है इसका माना है करीब होना, इसका माना है करीब होना। मेरे साथ साथ रहिएगा, देखिएगा, बेदार मजबा चाहिए मुझे इस मतलब को जो बयान करने जा रहा हूँ, इसका माना है करीब होना, कुर्ब मकानी के लिए आता है, इसलिए हम कहते हैं कि जनाब वो मवालात, वुजू में क्या होना चाहिए, जब वुजू करते हैं कि वुजू के अरकान में क्या होना चाहिए, मवालात यानी पै दर पै होना चाहिए, यह नहीं कि आपने पहले मुँह पर पानी डाल लिया फिर जाके खाया पिया कोई काम किया फिर आके हाथ धो लिए, ऐसे नहीं होगा। मवालात ये भी वली से है ना, यानी एक के बाद एक पै दर पै अमल अंजाम दीजिए, नमाज के अरकान में मवालात होनी चाहिए, यह भी उसी विला से करीब, कुर्बे मकानी, फलान जलसा फलान वलीयहु फलान या वलीयहु फलान, वो बैठा है और उसके साथ ही बगैर किसी वक्फे के तीसरी चीज़ कोई दरमियान में ना हो, ये एक मफहूम है, लफ्जी मफहूम वली का, ये करीब बैठा हुआ है, उसके साथ बैठा हुआ है, मवालात मुतवाली हादसात होते हैं ना पैदर पे, एक के बाद एक हादसा, एक के बाद एक हादसा, कहते हैं मुतवाली, यानी एक के बाद एक हादसा हो रहा है, एक के बाद एक सानिहा हो रहा है, एक के बाद एक वाक़ हो रहा है, ये मवालात क़ुर्ब मकान। कभी ये क़ुर्ब, कभी ये विला एक जानिबा है, कभी दो जानिबा है, कैसे एक जानिबा दो जानिबा कैसे, एक बार एक को विलायत हासिल है, मौला है, दूसरा मौला अलह है यानी उसका फॉलोअर है, एक दबार दो जानिबा यानी एक दूसरे के लिए है, जैसे इन्नल मोमिनूना वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाओ बास, उखुवत बिरादरी, ये मुआखात जो ही क्या है, ये एक दूसरे के लिए मुआलात। अब ये जो माना बढ़ता चला जा रहा है, इसमें एक लफ्ज़ है विला और एक लफ्ज़ है वला, ولا اور ولا، هنالك الولاية لله الحق، سورہ کہف میں ارشاد ہوا هنالك الولاية لله الحق، پس یہ ولایت مطلقہ جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے، جو فتح کے ساتھ آ رہا ہے نا، زبر کے ساتھ جو رہا ہے ولایت، یہ کیا ہے؟ وہ ولایت یک جانبہ، ایسی ولایت کہ جس کے اوپر کوئی ولایت، یعنی ولایت مطلقہ کہ اس کی اس ولایت میں اس کا ہمسر کائنات میں کوئی نہیں، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ ولایت سوائے اللہ کے کسی کو حاصل، فاللہ هو الولی، اسماء الحسنی میں سے بھی ایک نام اللہ کا کیا آتا ہے قرآن مجید میں؟ الولی، پس وہ ولی بھی ہے، وہ والی بھی ہے، وہ مولا بھی ہے، اس کی ولایت میں کوئی اس کا شریک، یہ پہلی اعلیٰ ترین جو قسم ہے ولایت کی کہ اللہ کی ولایت میں کوئی اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، وحدہ لا شریک ہے، جس کے لیے سورہ توحید صبح شام آپ نمازوں میں تلاوت کیا کرتے ہیں، وہ اسی بات کی گواہی کہ وہ اپنی ولایت میں اپنی حکومت میں تنہا ہے، لا شریک ہونا ہی اس کا کمال ہے، اس کی اس بات میں سے نہیں، کمال کیا اس کے لیے، تو یہ لفظ بھی ہمارے کمال تو انسانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کی ذات کا حصہ ہے کہ وحدہ لا شریک، کوئی اس کا ہمسر کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور یہ جو ولایت ہے اس کی اقسام پہ ہم ذرا سا ابھی آج اشارہ دیں گے، پھر آگے بات کو کل سے بڑھائیں گے، وہ بات یہ یاد رکھے گا آپ کہ جو ولایت ہے دو جانبہ، یہ کبھی ہماری سطح پہ ہے، کبھی انبیاء کی سطح پہ ہے، کبھی ائمہ کی سطح پہ ہے، اس میں ایک دوسرے کے بغیر ولایت کا مکمل یعنی تکمیل ہونا نظر نہیں آتا، بالکل ایسے ہی جیسے سورہ توحید میں ارشاد ہوا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، یعنی توحید کے رازوں میں سے یہ راز ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، یعنی متولد یہ تولید کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے کہ اس سے کوئی پیدا ہو یا وہ کسی سے پیدا ہوا ہو، اور ولم یکن لہ کفواً احد، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کوئی اس کا شریک بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہ ہو، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہ ہو، اس کے ماں باپ نہ ہو، اس کے بیٹے بیٹیاں اللہ کے لیے نہ ہو، یہ سورۃ توحید ہے، یہ نہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ایک ولایت کی قسم ایسی ہے کہ جب تک ہمسر نہ ہو ولایت کی تکمیل نہیں ہوگی، جب تک ہمسر نہ آ جائے ولایت کی تکمیل نہیں ہوتی، جب تک دوست نہ آ جائے رسالت کی تکمیل نہیں ہوتی، جب تک اس کا اعلان نہ ہو جائے دین کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ وہ دو جانبہ ولایت ہے کہ علی، اب آپ کہیں گے کہ کیسا جملہ کہہ دیا مولا کے بارے میں، لیکن میں کیا کروں کہ یہی حقیقت ہے، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ علی کی ولایت کی جیسے دین کی تکمیل کے لیے علی کی ولایت کا اعلان ضروری ہے، بالکل اسی طرح علی کی تکمیل کے لیے اس کے لیے فاطمہ جیسا ہمسر ہونا ضروری ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے کسی بچی کو تو خیال آ گیا میرا، ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ وسلم، بس یہی میرا قصور ہے کہ 10-12 آدمی لے کر ساتھ نہیں چلتا اس قسم کے، ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ وسلم، خیر تو بات واضح ہوئی کہ وہاں جیسے دین مکمل نہیں ہوتا، نہیں ہوگا دین مکمل جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے، اور یہاں علی کی تکمیل نہیں ہوتی کیونکہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، یہاں تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی چادر ہو، اور چادر بھی اس کی چادر ہو جس کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی ہو، جب تک اس چادر میں یہ سب سمت نہ آئے، نہ رسالت نہ ولایت نہ امامت، ان سب کی تکمیل کے لیے فاطمہ کا وجود ضروری تھا، یہ ایک قسم ہے ولایت، یہ دو جانبہ ولایت، جو دو جانبہ ولایت ہم بھی ایک دوسرے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یہ اس دو جانبہ ولایت کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جب تک دو طرف کی نہ ہو، लैत की तकमील नहीं हो सकती। वहां हमसर का ना होना जरूरी अल्लाह के लिए, यहां हमसर का होना जरूरी ताकि फर्क हमेशा कयामत तक कायम रहे कि अल्लाह की जात है जो लम यलिद वलम युलद है। अली वो है जिसके बाबा का नाम है अबू तालिब, जिसकी माँ का नाम है फातिमा बिनते असद, जिसकी हमसर का नाम है फातिमा, जिसके बेटों के नाम है हसन हुसैन, जिसकी बेटियों के नाम है ज़ैनब व उम्मे कुलसूम। जब तक ये पूरा खानदान जमा ना हो उस वक्त तक इनमें से किसी की भी तकमील नहीं होती। लिहाजा ये सब एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे हैं, एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, लिहाजा जरूरी था। आइए मतलब को और आगे बढ़ाएं। कभी भी कुफार को औलिया ना बनाओ। ये कुफार की विलायत का क्या मतलब है? इनको सरपरस्त ना बनाओ, भाई हम तो नहीं बनाते। देखिए जबान से कहना और अमल करना दोनों में फर्क है ना। जबान से मैं कहता रहूं कि मैं तो सिवाय मासूमीन की विलायत के और किसी पर यकीन नहीं रखता, अमली मैदान में क्या है? अमली मैदान में इंसान जिसको फॉलो कर रहा होता है ना, उसी की विलायत है उसके ऊपर। यानी इसका मतलब इसका हुक्म मान रहा है, हुकूमत के माने में भी है ना। पहले कहते थे ना, पुराने लोग कहते विलायत जा रहा हूँ, लंदन जा रहे होते थे यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में, अरे वो विलायत गया हुआ है। पुराने बूढ़े लोग जानते हैं, बच्चों को तो नहीं मालूम ये लफ्ज़ कि विलायत किसे कहा जाता था, क्योंकि हुकूमत वहाँ थी ना, मलका विक्टोरिया की हुकूमत थी भाई, यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी बाकी हिंदुस्तान पे पूरे बड़े सदीर पे। तो लिहाजा विलायत जो वहाँ जाता था तो पाए तख्त क्योंकि उधर लंदन, लिहाजा विलायत जा रहा हूँ क्योंकि हुकूमत वहाँ थी, विलायती कहते थे, विलायती आदमी हो गया ये वहाँ जाके। तो विलायत माना हुकूमत के माने में, जिसका आप हुक्म मान रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी अमली ज़िंदगी में, उसकी विलायत आप पर है, उसकी विलायत आप पर है, उसका हुक्म मान रहे हैं। और जिसका भी आप हुक्म मान रहे हैं, आप ऐलान कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा कोई मेरे लिए रहनुमाई करने वाला मेरे लिए मौजूद नहीं है, उसकी विलायत को आप कबूल कर रहे हैं, उनकी विलायत को आप कबूल कर रहे हैं। जिनकी भी विलायत है वो हमारे हुक्मरान कबूल करें या रियाया कबूल करें, उन्हीं की विलायत कहलाएगी। जिनका अमली तौर पर आप मुजाहरा कर रहे हैं ना, जिनकी बातों को आप मान रहे हैं, अमली तौर पर आप अमल कर रहे हैं उन्हीं की। मसलन छोटी सी अकसाम की तरफ चले जाते हैं। अपने नफ्स पर मैंने जिक्र किया था, आप वली हैं, हर इंसान अपने नफ्स पर वली है। क्या मतलब? हाकिम है, जैसे चाहे करे, इख्तियार है ना, अच्छा करे बुरा करे, गुनाह करे सवाब करे, अपने नफ्स पर तो इख्तियार है ना उसे, जो चाहे करे। नहीं वली है, जैसे चाहे चलाए, अच्छाई की तरफ चलाए या बुराई की तरफ चलाए, जुर्म की तरफ चलाए अच्छाई की तरफ चलाए, जैसे भी चलाए, अपने नफ्स पर हाकिम है, अपनी मर्जी से हर काम कर रहा है। एक सलावत इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और भी किसी का फोन ऑन आए तो चला जाए उठ के सुनने के लिए, लेकिन कल से फिर पीछे बैठे अच्छा नहीं लगता ऐसे मजलिस से उठ के जाना, ये बद तहजीबी है हमारी यहाँ मजलिस की तहजीब में। एक और सलावत इनायत फरमाइए मोहम्मद आले। जैसा भी हो, जिसका हुक्म मान रहा है, जिसके पीछे चल रहा है, उसी की विलायत उस पर हाकिम है, उसके हुक्म पर अमल कर रहा है, जिसकी बात को मान रहा है, जिसकी बात को तस्लीम। अमल से तो अपने नफ्स पर हाकिम है, जो चाहे करे, अच्छाई करे बुराई करे, गुनाह करे सवाब करे, अपने नफ्स उसका खुद उसका नफ्स जिम्मेदार है, अपना नफ्स जिम्मेदार है, अच्छा करे या बुरा। ये एक विलायत की सबसे छोटी किस्म है कि तुम्हें इख्तियार हासिल है, जो चाहो करो। और लोग कहते हैं जी अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप कौन है रोकने वाले, आप कौन है टोकने वाले। ये ऐलान कर रहा है कि मैं हाकिम हूं अपने नफ्स का, तुम कौन हो रोकने वाले। अच्छा ये बात कराची में तो कह लो, बल्कि पाकिस्तान में जहां चाहो कह लो, क्योंकि यहां कोई किसी का हुक्म मानने वाला नहीं है, कोई किसी की नहीं मानता, रिटी नहीं है। हुक्मरानों के बच्चे उनकी बात नहीं मानते, हमारी बात कहां से मानेंगे, उनके भी बच्चे नहीं मानते। जो हुक्मरान आप पर हुकूमत कर रहे हैं, अपने बच्चों पर भी उनकी विलायत नहीं, अपने बच्चों पर हुकूमत नहीं है। इसीलिए किसी कौम की पस्ती की सबसे बड़ी दलील ये होती है कि पस्त लोग उन पर हाकिम हो जाए। किसी कौम के लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती कि पस्त लोग, नीच लोग। अब मैं इससे ज्यादा तहजीब मिंबर के खिलाफ है अल्फाज इस्तेमाल करना कि पस्त और नीच लोग, और मजीद तैयार किया जा रहा हो
कूड़ा करकट आप पर मुसलत करने के लिए, क्योंकि जानते कौम है इस काबिल कि जबान से तो किसी को वली कहते हैं, अमल में ये इसके पीछे भाग रहे, उसके पीछे भाग रहे, तो जिसको चाहेंगे बनाएंगे। आधा पागल हो वजीर आजम कल बन जाएगा, इत्मीनान रखिए, आधा पागल हो, मेंटल केस हो। क्यों? इबरत का मकाम ये होता है कि उन्हीं आधे पागलों के पीछे पढ़े लिखे लोग खड़े हुए, हाथ बांध के उनके पीछे हाथ बांध के खड़े हुए, इतने इशारे काफी है। मैं तो खुल के बात कर रहा हूं, जो इसको इशारे समझना वो इशारे समझ ले, समझ में आ गई बात। ये किसी कौम की रुसवाई और जिल्लत की दलील होती है कि उन पर जाहिल लोगों का हुजूम हुकूमत करने लगे और ठट्टे उड़ाए, मजाक उड़ाए कि ये इसके काबिल है ये लोग, कि हम कर रहे हैं, हमारे बाद हमारे पागल बच्चे इन पर हुकूमत करेंगे, हमारे बाद हमारे पागल बच्चे, मेंटल केस, वो इन पर, क्योंकि जानते हैं कि ये है इसी काबिल, जानते हैं कि हक क्या है बातिल क्या है, मगर इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हक को हक कहे बातिल को बातिल कहे। या जानते हैं कि इनमें दम नहीं है, ये घर में बैठ के बातें कर लेंगे, टीवी के सामने बैठ के बातें कर लेंगे, ऑफिस में बैठ के बातें कर लेंगे, सड़क पे निकल के हमने इस काबिल छोड़ा ही कहां इनको, इनके जमीरों को। चले कुछ दो चार की समझ में आ गई बात जो मैं कहना चाह रहा था। एक सलवार दे दिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, हमने इसका भी छोड़ा कहीं, हमने इनके उनको मुर्दा जमीन बना दिया, बेहिस बना दिया। बस ये हादसात देखेंगे कहेंगे हाय अफसोस क्या हो गया, ओहो बड़ा गलत हो गया, ओहो बड़ा जुल्म हो गया, नहीं निकलेंगे। खुदा ना करे, खुदा ना करे जब इनके घर में आग लगे फिर निकलते हैं, फिर चिल्ला रहे होते ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ, तो ये तो पता नहीं कब से हो रहा था, जब से क्यों नहीं बोल रहे थे मजलूम के लिए। अगर हमेशा मजलूम के लिए खड़े होते तो वे जब भी मारे जाते तो खौफ में मरने से बेहतर था, मरते तो जब भी खौफ से मरने से बेहतर था कि मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकार के मर जाते, तो वो तुम्हें मरना थोड़ी होता, वो तुम्हें सुरखरुई होती। लिहाजा अब ऐसो ऐसो की विलायत, अब पुरानी मजीद में तो शैतानों की विलायत का जिक्र किया गया, तो शैतान खुद थोड़ी आ रहा है, ये शैतानों के चेले जो हम पर मुसल्लत हैं भेड़ियों की सूरत में, सियासी और मजहबी भेड़ियों की सूरत में, ये शैतानी टोले जो हम पर मुसल्लत हैं, वो विजारत उज़्मा से लेके नीचे की विजारत तक मुर्दा जिस्मों से गोश्त नोच नोच कर खाने वाले लोग, ये करोड़ों मुर्दा लोग ही तो हैं उनके लिए, उन लोगों के जिस्मों से गोश्त नोच नोच कर खाने वाले लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? जानते हैं कि फिर हम आएंगे, फिर ये हमारी विलायत को कबूल करेंगे, ये इसी काबिल है, ये 5 साल हमें बुरा कहेंगे भला कहेंगे फिर ये हमारी विलायत को कबूल करेंगे। क्यों? इसलिए कि 67 सालों में इन्हें बेजमीर बाजरत के साथ, यानी फिक्र की बात कर रहा हूं, जो फिक्र एक साम्राज्य फिक्र है उस फिक्र की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, यानी वो ये समझते हैं कि हमने इनके पास छोड़ा ही क्या, इनके पास कोई रास्ता नहीं, ये घबरा के ये इधर आएंगे या उधर आएंगे या उधर जाएंगे, सब अपने हैं। अभी तक आप समझ रहे थे ना कि सब अलग अलग हैं, अभी तक 67 साल आपने ये समझा कि ये सब अलग अलग हैं, एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, ये हिजब इख्तिलाफ है, ये हिजब इख्तदार है, और ये पहले हुकूमत में था, ये अब हुकूमत में है, ये इसका दुश्मन है, वो उसका दुश्मन है, टीवी पे देख के आप समझते थे ये बड़े दुश्मन, ये एक दूसरे को कैसे गालियां दे रहे, एक जो कैसे बुरा भला कह रहे, कैसी नकाब उल्टी कुदरत ने इनके चेहरे से, भाई इतना ही तो हुआ, क्या हुआ कि बस 2 पैसे की हांडी ही तो गई, मगर चेहरों से नकाबे तो उतर गई, सब चोर हो गए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 लब्बैक, समझ में आ गई बात? लोग कहते क्या नहीं पता क्या मिल गया, जिनको तुम आपस में दुश्मन समझते थे कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे को खूब गालियां बकते हैं, एक दूसरे के सिस्टम के खिलाफ हैं, एक दूसरे के मंशूर के खिलाफ है, ये बड़े इनकलाबी हैं, ये बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये बड़े प्रोग्रेसिव हैं। जब सिस्टम पर आंच आई तो ये सारे चोर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एक जगह बैठे के नहीं बैठे। इसीलिए तो मैंने कहा कि दो पैसे की हानि ही तो गई है बस। मुहावरा इसलिए नहीं पड़ता कि तहजीब मिंबर के खिलाफ है, आदाब मिंबर के खिलाफ है, पैगाम पहुंचना चाहिए, बस पहुंच गया ना। कहते लोग क्या मिल गया क्या मिल गया, बाबा तुम्हें क्या मालूम क्या मिल गया। बात यह कि कभी ये बेजमीर बेदीन लुटेरे चोर स्मगलर कातिल डाकू कभी बेनकाब ना होते। जब खतरे में पड़ा सिस्टम, इस सिस्टम को गालियां देने वाले भी घुस गए साथ उनके, सब बेनकाब हो गए। क्यों बाबा ये चोर या चोरी डाके का सिस्टम खत्म हो गया तो हम कहां जाएंगे भाई। सब ने हाथ में हाथ डाले उस चोर और डाकुओं के सिस्टम को बचाने के लिए, सब इकट्ठा हो गए। ये नहीं निकल जाए हाथ, यहां से ना निकल जाए, ये जो इतनी मेहनत से हमने चोरों का सिस्टम बनाया है, इनको मखलूस करें खुद तो भाग जाएंगे, इनका क्या रखा है, बाहर भाग जाएंगे, भुगतेंगे तो 20 करोड़ अब हम ये ले। आप समझ में आई मेरी बात, इसलिए मैंने कहा क्या हुआ भाई। लोग कहते क्या मिल गया, तुम्हें क्या पता हमें क्या मिल गया। हम तो इतना कह रहे हैं कि बस दो पैसे की हांडी तो गई है, मगर कौम जो 67 साल से जो बातें नहीं समझ पा रही थी आज समझ में आ गई ना। इंशाल्लाह जब समझ में आ गई तो अल्लाह हिम्मत भी दे ही देगा, अगला कदम आगे का कदम है भाई, इसलिए कोई परवाह नहीं। कहते क्या मिला क्या नहीं मिला, हम हमें ये हो गया वो हो गया, ना मालूम कितने किस्म के इतराज। अरे बाबा कुछ भी नहीं मिला, मगर यूसुफ के खरीदारों में नाम तो आ गया। आइंदा जब भी कभी कुछ होगा इस पहले होने का जिक्र जरूर होगा कि जब कोई नहीं बोल रहा था तो कौन दीवाने थे जो बोल रहे थे सिस्टम के खिलाफ, कौन थे जिन्होंने सबसे पहले बेनकाब किया था इन चोरों के टोले पे, जो बजाहिर एक दूसरे के मुखालिफ बन रहे थे, जब मफाद आता है एक दूसरे के खिलाफ, जब मफाद तकाजा करे एक दूसरे के साथ, जब मफाद हो जाए एक दूसरे के खिलाफ, ये सिस्टम है। क्योंकि इन्हें यकीन है कि ये विलायत हमारे हाथ से निकलने वाली नहीं है, अपने हाथ में रखो। क्यों, इतना तकसीम दर तकसीम का अमल कर चुके हैं इनके साथ, इतना तोड़ फोड़ का अमल कर चुके हैं इनके साथ कि अब इनमें दम नहीं है। ये सब की बात कर रहा हूं, यहां से लेके शुमाल से लेके जुनूब तक की बात कर रहा हूं कि इतना तोड़ फोड़ दिया, अब इनको मोहताज बना, हाथ फैला के जिंदगी गुजारे बस, कभी इसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास। इनमें ये शऊर बेदार ना होने दो कि अपनी तकदीर अपने हाथ में रखो, अपनी तकदीर को बनाना सीखो, अपनी तकदीर को लिखना सीखो, अपने मुकद्दर को तहरीर करना सीखो। कम लोग होते हैं, कम लोगों की समझ में विलायत की ये किस्म आती है कि विलायत की ये किस्म कौन सी, इसी किस्म को बचाया है, इसी किस्म को बचाया है विलायत की करबला में हुसैन ने, इसी विलायत को। जो बात समझना चाह रहा हूँ मैं समझने की कोशिश कीजिएगा अजीजान मोहतरम, किस बात की लड़ाई है करबला में। बहुत सारी तफसीरें हैं, बहुत सारी तफसीरें करबला की और कयामत तक होती रहेंगी, मगर ये पहलू भी आज समाज फरमाते जाइए, नक्श रहेगा आपके जहनों में, ये पहलू भी देखते जाइए क्या है करबला, किस बात की लड़ाई है। एक बात इंसाफ से बताइए, अगर वाकई करबला ना होता तो दीन बचता नहीं, बचता ना, इस्लाम होता, और अगर इस्लाम ही ना होता दीन ही ना होता तो तारीख इस्लाम कहाँ होती, होती जुज़ी वाक़यात होते नहीं होते, तारीख में इतना जिक्र होता कि भाई आया था एक दिन ऐसे ऐसे आया चला गया ख़त्म, जुज़ियात तो नहीं होते। जब दीन ही नहीं हो
वाकई करबला ना हो तो इस्लाम खत्म। जब इस्लाम खत्म तो आप कारनामे कहाँ लेके जाएंगे? जिसने जो भी कारनामा अंजाम दिया वो खत्म, एक दिन ही खत्म हो गया, तो कारनामे भी खत्म हो गए, छुट्टी हो गई। क्या हुआ बद्र में, क्या हुआ उहद में, क्या हुआ खैबर में, क्या हुआ खंदक में? दीन ही नहीं है। क्या हुआ हुदैबिया में, क्या हुआ मुबाहला में, क्या हुआ गदीर में? कुछ है ही नहीं भाई। दीन खत्म हो गया ना, मुसलमान ही नहीं तो जिक्र कौन करेगा? है ही नहीं ना कोई मुसलमान, नहीं है ना। जो बात समझाना था, अब मुझे बताइए कि वाकई करबला के बाद मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, मौजू रखा है मैंने मकामात विलायत। पूरी दुनिया में जहां जहां भी मजलिस हो, 365 दिन तो मजलिस हो रही है माशाल्लाह। हो रही है कि नहीं हो रही भाई? आजादारी 365 दिन आप करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे किसी भी कीमत पे करते हैं, करते हैं ना, शहीद दे के कर रहे हैं। मगर आजादारी 365 दिन हो रही है कि नहीं? या किसी शहीद का सोयम, या किसी शहीद का चेहलुम, या किसी शहीद की बरसी? तो शहीदों के खून का यह सदका कोई कम है कि जो आजादारी आप 2 महीने 8 दिन करते थे, जिसे रोकने के लिए हमें कत्ल किया गया, हमारे खून ने, हमारे शोहदा के खून ने उसी आजादारी को 365 दिनों पर मुहित कर दिया। लब्बे लोग कहते हैं क्या हो रहा है, क्या तो समझ में नहीं आ रहा। 365 दिन आजादारी हो रही है कि नहीं हो रही? ये शोहदा के खून का सदका है। ये सबसे बड़ी कामयाबी हुई कि नहीं हुई, फतह हुई भाई? इसी को तो रोकना चाह रहे थे कि मजलिस ना करो, मातम ना करो, वो और बढ़ गया। तो शोहदा का खून देकर बढ़ाया है ना भाई, शोहदा का खून दिया तो 68 दिन से कहाँ तक चला गया मामला? 365 दिन आजादारी हो रही, कोई दिन बाकी नहीं बचा। इन अहमकों को यही समझ में नहीं आया, हमारे दुश्मनों को, उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि जितना मारोगे, जिस काम के लिए मार रहे हो, उतना ही वो और बढ़ता चला जाएगा। उतना ही बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया? आप इंसाफ से बता दीजिए, मैं कोई मुबालिगा तो नहीं कर रहा, मैं कोई आपसे आपको खुश करने वाले जुमले तो नहीं कह रहा कि आप खुश होकर चले जाए यहाँ से। हकीकत पूछ रहा हूँ आपसे कि शुहदा के खून के सदक़े में जिक्र फैला या सिमट गया? फैल गया ना बस। अब मुझे ये बताइए कि विलायत अली का सबसे ज़्यादा जिक्र कहाँ सुनते हो भाई? कहाँ? मसाहिब तो मैं चंद मिनट के पढ़ता हूँ, मैं क्या सभी चंद मिनट के पढ़ते हैं? बाकी वक्त क्या हो रहा होता है? खुदा के बंदो, इसलिए कह रहा हूँ कि सब शुतुम होता था ना मिंबरों से अली पर, हुसैन के बाबा पर। हुसैन ने ये नक्शा जंग का तैयार किया था, यजीद ने नहीं। हर मैदान जंग से बच जाने वाले बनी उमैया, हुसैन ने नक्शा तैयार किया था कि जो मैदान मैं तैयार कर रहा हूं उस मैदान से तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मेरा ही जुमला है ना, याद है आपको, तकरार कर दूं तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। कि दुनिया कहती है कि हुसैन को घेरा था करबला में उमर साद के लश्कर ने, गलत कहती है दुनिया, गलत कहता है मौरिख, गलत कहता है मुहद्दिस, गलत कहता है मुफस्सिर। क्या मजाल बनु उमैया की, क्या अली के लाल को, फातिमा के लाल को कोई घेर लेता? ये फातिमा का लाडला हुसैन है जो करबला में बनु उमैया को दफन कर रहा है। जो करबला में यजीदियत को घेर रहा है, हर जगह से बच गए हो, यहां से बच कर जाने नहीं दूंगा। कयामत तक के लिए लानत का ताख बनी उमैया के गले में डाल दिया हुसैन ने। अब चीखते फिरो, चिल्लाते फिरो, कुछ नहीं होता तुम्हारे चीखने चिल्लाने से। ये काम है मशीयत के जो हो गए, और कयामत तक ये जारी और सारी रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो अब ये क्या बदला लिया हुसैन ने? मेरे बाबा पे सबो शतम करता,
قیامت تک کے لیے منبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے ہوں گے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ سب سے زیادہ میرے مولا کے فضائل کہاں بیان ہوتے ہیں؟ مجلس حسین۔ اب میں نے کیا کہا کہ ولایت کی جنگ ہے جو لڑی ہے حسین نے، تکمیل دین ہوئی تھی غدیر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ہوئی تھی؟ تکمیل دین، دین مکمل ہوا تھا۔ اس دین کی حفاظت کہاں ہوئی؟ کربلا تحفیظ دین کا نام ہے، حفاظت دین کا نام۔ علی سے دین مکمل ہوا، اعلان ولایت پہ دین مکمل ہوا، کربلا میں حسین نے حصار کھینچا، حفاظت کی۔ قیامت تک کچھ نہیں ہوتا اسلام کو، اور حسین کا ہی بیٹا آئے گا تو دین کا غلبہ ہوگا۔ ایک حصہ باقی رہ گیا، بس آخری حصہ باقی رہ گیا، غلبہ دین۔ تکمیل دین ہو چکی، تحفیظ دین ہو چکی، تغلیب دین باقی ہے، غلبہ دین باقی ہے۔ تسلسل ہے، تسلسل، سب ولایت کا تسلسل ہے۔ ہمیں اکیلا کرنے کے خواب دیکھنے والے، بڑے غرور اور تکبر سے جملے ادا کرنے والے کیسا کر دیں گے کہ کوئی ان سے ہاتھ ملانے والا نہ ہو؟ آج بلوں میں چھپتے پھر رہے ہیں، آج خود اکیلے ہو گئے، پوری دنیا ان سے برات کا اعلان کر رہی ہے۔ بابا جس سے پوچھو کہ دل میں بے شک وہ ہیں، مگر سامنے کہتے نہیں نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہاں نہیں، پوری دنیا میں، بلکہ جس نے بنایا تھا نا آل سعود نے، اس کے مفتی کو بھی فتویٰ دینا پڑا، اس کو بھی کہنا پڑا کہ یہ کافر ہیں۔ اس کو جس نے مال خرچ کیا اربوں ڈالر، دیکھا کہ یہ تو ادھر ہی آ پڑے۔ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، دوسرے کے لیے گڑا کھودو گے تو یوں ہی گرو گے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جو آگ ہمارے لیے لگائی جا رہی ہے بے فکر رہو، تمہیں خود بھی اس میں جلنا پڑے گا، ہم تو نکل جائیں گے۔ اور نکل گئے، نکل گئے۔ ہماری تو ایک نسل جوان ہو گئی، ہمارے معصوم بچے آج بھی اپنے ماں باپ کی گود میں، آغوش میں بیٹھ کے اسی طرح مجلس میں بے خوف و خطر بیٹھتے ہیں۔ ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ہم اسی طرح شان سے سر اٹھا کے جیتے رہے ہیں صدیوں میں، اور جیتے رہیں گے جب تک یہ زمانہ جاری ہے۔ ایران ہو، عراق ہو، لبنان ہو، شام ہو، جہاں بھی ہیں سرخرو ہیں اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ پیٹ تو نہیں دکھائی؟ آج پہلی محرم آ گئی، کتنے سخت سخت محرم گزر گئے، نہیں گزر گئے؟ کیا ہوگا بھائی، مجلس کے آغاز میں جو پیغام دیتا ہوں ہمیشہ بیچ میں سن لیجئے، کیونکہ شروع میں بھول گیا، یاد نہیں رہا۔ کیا ہوگا؟ گھروں سے نکل آئے نا، محرم شروع ہو گیا، کیا ہوگا؟ ہر سال محرم آتی ڈرائی جاتا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حالات خراب۔ کیا خراب ہے بھائی، کیا ہو جائے گا؟ خون کی ندی بہ جائے گی، تو بہ گئی، کیا ہو گیا ہمارا؟ بہتی رہی، کیا ہو گیا ہمارا؟ ہم وہیں ہیں۔ جب محرم شروع ہو گیا تو ہم میدان کربلا میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اب ہمیں کائے کا ڈر ہے، اب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ ڈر اور خوف اس وقت ہوتا جب ہم یہ سمجھتے کہ ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یا آپ یہ سوچتے کہ بھائی ہم ہی نہیں ہوں گے تو عزاداری کیسے ہوگی، یا میں یہ سوچوں کہ میں ہی نہیں ہوں گا تو مجلس کون پڑے گا، خدا کے بندو ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، نہ تمہارا مسئلہ ہے، تم رہو نہ رہو، میں رہوں نہ رہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ معاملہ ہمارا تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو اس ولی الوالی، ولی اور والی یعنی اللہ اور محافظ ولایت حسین کا معاملہ ہے، آپس میں وعدہ عہد و پیمان ہے۔ اللہ کے ذکر کو زندہ کیا ہے، اللہ اس کے ذکر کو زندہ رکھے گا۔ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ کسی کو ذکر کرنے کے لیے، کسی کو ذکر سننے کے لیے چن لیا، تو سعادت ہے ہماری، ہے کہ نہیں؟ لہذا اطمینان رکھی، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو جائے گا؟ دھماکے ہوں گے، ہو جائیں، ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں اور ہو جائیں گے، ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کربلا میں ایک ایک دن میں دو دو ہزار شہید ہوئے،
कास्बैन में एक दिन में ब्लास्ट हुआ, 2000 शहीद हो गए, क्या हो गया? वहाँ जुलूस रुक गए, वह मातम मजलिस रुक गया, क्या हो गया? यहाँ इतने धमाके हुए आशूर को, वह अरबईन को, उसके अलावा ना मालूम क्या क्या मस्जिद हैदरी, मस्जिद रजा और कहाँ कहाँ सब कुछ होता रहा। क्या रुक गया कुछ? मजलिस रुक गई, मातम रुक गया? ना बाबा ना, मेरा आपका मामला है ही नहीं ना, मैंने पहले अर्ज किया मामला है कुछ और, किसी और का मामला है। अब दो माबूद का अहद पैमान है, याद रखो। लिहाजा हुसैन ने जो जंग लड़ी है वो विलायत की जंग है करबला में, एक पहलू, तमाम पहलू नहीं कह रहा, क्योंकि जितना ज़माना आगे बढ़ेगा करबला की तफसीरें भी बढ़ती और नए नए मफहूम सामने आएंगे। विलायत अली की जंग है, वादा है हुसैन का, तुम मेरे बाबा को बुरा भला कहते हो, अब क़यामत तक के लिए मिंबर दूंगा, ऐसा मिंबर दूंगा, तुम्हारे पास तो चंद साल रहेगा नहीं मेंबर, जिससे तुम मेरे बाबा पे सब शतम करोगे। तो जाली चीज़ जाली होती है, ख़त्म हो जाती है। कभी आपसे अपील की है किसी ने कि भाई आपसे खुदा के नाम पर अपील है जुलूस में आ जाना नौ मुहर्रम के? आपसे कभी किसी ने अपील किया आपको अल्लाह रसूल का वास्ता आशूर के जुलूस में आ जाना? किसी ने की तो बता दीजिए मुझे। किसी आलिम ने, किसी मर्जे ने, किसी जाकिर ने, किसी खतीब ने, किसी अंजुमन ने क्या अभी अपील किया भाई अल्लाह रसूल का वास्ता चेहलुम के जुलूस में आ जाना? नहीं, किसी ने अपील की? क्यों? यहाँ अपीलों पे काम थोड़ी चलता है भाई, यहाँ अपीलों पे काम नहीं चलता। बोल बोल ना आने वाला ना आया, मुझे क्या पड़ी है? कभी आशूर को आपने किसी से पूछा कि फलाना नहीं आया, फलाना क्यों नहीं आया, फला फला? आपको अपने ही होश नहीं किसी का, क्या भाई कोई आए नहीं आए, मैं आ गया मैदान में खड़ा हूँ आशूर के मैदान में। तो खुदा के बंदो, एक दिन तुम मनाते हो, एक दिन अल्लाह मनवाता है। अल्लाह हमें किसी से ज़रूरत ही नहीं है कहने की, ये कर लो वो कर लो अपील कर लो, ज़रूरत ही नहीं है भाई। जिसको आना है आओ, नहीं आना ना हो, हाँ मेरे घर में मजलिस होगी तो ज़रूर गुजारिश करूँगा भाई आपसे, गुजारिश है मेरे घर में मजलिस आ जाइएगा। वो घर में चाहता हूँ कुछ मोमिनीन जमा हो जाए, मेरी इमाम बारगाह में, मेरे मोहल्ले की इमाम बारगाह में मजलिस है हुसैन भाई आ जाइएगा। है अच्छा, आप मुझे बताइए, अब आपसे भी मुझे एक बात करनी है, दो टोक, अच्छा लगे या बुरा लगे आपको। बरसों से मैं सुन रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला, कि जंग का बायकाट करो, जंग का बायकाट करो, ये जंग जो है बड़ा कमीना अखबार है, दुश्मन अहले बैत है, दुश्मन तशय्यो है, और अब तो उसका मुल्क से दुश्मनी भी साबित हो गई है, हमेशा से सुनते चले। और हमसे लोग कहते थे आप लोग इसके बायकाट का ऐलान क्यों नहीं करते जंग के? और फिर वो कहते सोने पे सुहागा, ये वह कि उस मलून का एक चैनल भी आ गया जियो नाम से, और जो तमाशेबाजी उन्होंने लगाई है, दहशतगर्दी फैलाने वाला ये चैनल, दहशतगर्दों को हीरो बना के पेश करने वाला ये चैनल, दहशतगर्दों के इंटरव्यूज़, दहशतगर्दों की खबरों को हाईलाइट करके आगे बढ़ा के, जितनी एक किस्म की फितना परस्ती हो सकती थी, फितना अंगेजी, वो इसने की, इस अखबार ने भी, इसके चैनल ने भी, जंग ने भी और जियो ने भी, फ़िरक़े वाराना फसादात, लसानी फसादात, जितने किस्म के हंगामे ये करा सकता था, गुज़िश्ता 44 साल का तो मैं गवाह हूँ, जब से मैंने होश संभाला है कि ये हर चीज़ का 44 साल का गवाही के, मेरी उम्र 44 साल ना समझेगा, मैं इससे कहीं ज़्यादा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला है, इन्हें होश की बातें कर रहा हूँ, उस ज़माने की बात नहीं कर रहा जब मुझे हो जाए, आप कहेंगे बड़ा उम्र छुपा रहे हैं अपनी, शक्ल से तो 55-56 के लगते हैं, कह रहे हैं 44 साल का हूँ। तो ये फ़र्क है, शियों को एक एक बात खोल के बतानी पड़ती है, ना बाहर जाके तबसरे करने में इनसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, तब समझ में आई कि 44 साल से मैं देख रहा हूँ, इसने कोई मौका शैतनत का हाथ से जाने नहीं दिया, और लोग हमसे कहते थे इसका बायकाट होना चाहिए, इसका बायकाट। अब जब बायकाट का ऐलान कर दिया गया तो अब किसी को चैन नहीं आ रहा कि जब तक इसमें नाम नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा, जब तक इसमें खबर नहीं लगेगी, जब तक इसमें इश्तिहार नहीं लगेगा, सिवाय दो चार लोगों के जो पाबंद हैं अपने अहद के और मरते दम तक पाबंद रहेंगे। अगर इस जबान से बायकाट का ऐलान कर दिया ना तो दोबारा आप हसन जफर के घर में जंग अखबार नहीं देखोगे, और महीनों हो गए क्योंकि हमने ऐलान किया था। अगर एक बार बायकॉट का ऐलान कर दिया तो कोई उसमें इश्तिहार नहीं लगा सकता हमारा, कभी नहीं लगा जितने महीने हो गए हमें ऐलान किए हुए। और सलाम करता हूँ उन बास उलमा को, बड़े बड़े उलमा को, कि जिन्होंने यही रविश अपनाई कि नहीं देना इसको। लोग कहेंगे आपके एक के ना देने से क्या होता है, अरे कुछ ना हो, लेकिन आगे चलकर लोग कहेंगे ना कि हाँ भाई दो चार लोग तो थे ऐसे जिन्होंने जबान की पाबंदी की है, अब किसी को चैन ही नहीं आ रहा इश्तिहार दिए बगैर, क्यों दे रहे हो भाई, दुश्मन है तुम्हारा। इस मजलिस का इश्तिहार नहीं आया ना उस अखबार में, तो क्या आपको पता नहीं कि मैं यहां पढ़ रहा हूं, ये मजमा कैसे आ गया बगैर इश्तिहार में जंग के? जंग में तो इश्तिहार नहीं है सर श्रीखंड। हमारे ट्रस्टियों ने कम से कम इस मामले में हमारा बहुत साथ दिया, हमने कहा भाई इसमें नहीं लगे, उनका नहीं लगेगा। IRC वालों को हमने कहा हमारा इश्तिहार जंग में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अजहर खान ने जहाँ पढ़ा हमने कहा नहीं लगे, उनका नहीं लगेगा। तो क्या मजमा महान हुआ या यहाँ कम हो गया, क्या हो गया, क्या परेशानी है कि जब तक इसमें इसको पैसा नहीं दे यहूदी को, उससे भी बदतर इसने कितनी दुश्मनी की, मैं खुल के कह रहा हूं मुझे तो कोई परवाह नहीं, ना बुलाए ना लगाओ, लगवानी भी नहीं है इसमें, इतना साथ नहीं दे सकते कि इस मलून का बायकॉट का ऐलान किया था और पूरी कौम बरसों से यही बात करती थी इसका बायकॉट इसका बायकॉट, अब किसी को चैन नहीं आ रहा। पढ़ने वालों को नाम चाहिए, पढ़वाने वालों को नाम चाहिए, अंजुमनों को नाम चाहिए, किस लिए अपना पैसा वहां लुटाया जाए। हमारी मजलिसों के ऐलान वैसे सबको पता है कि कहां कहां पढ़ते लोग, अपने तौर पे ऐलान कर दीजिए, इश्तिहार लगा दीजिए, पेनाफ्लेक्स लग गया, सब हो गया कि नहीं हो गया, हो जाते नहीं है, इसमें जरूर लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, हमारे तो नहीं लगे, कौन सा मजमा कम हो गया, क्या कितनी कमी आ गई लोगों में, क्या हो गया। और अभी जो इतने महीनों से पढ़ रहे हैं मजलिस नहीं पढ़ रहे थे क्या, मगर कहा हुआ था नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इस जबान से कहा है, जबान पाबंदी तो करो, अहदो पैमान है, अहदो पैमान है। लिहाजा जो हमारा दुश्मन है इतना सा काम जब नहीं कर सकते, इसमें अपने नफ्स को काबू नहीं कर सकते कि कह दें कि भाई नहीं देना इश्तिहार, करोड़ों रुपए हमसे कमाता है मलून सारा साल, और सारा साल हमसे दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देता। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इसकी मैं अपील करता हूं, मैं जिसकी अपील नहीं कर रहा कि बाबा इतना तो साथ दे दो कम अज कम, कि जब एक मौका है, और ये ना सोचो कि चलेगा नहीं चलेगा, हमारे ना लेने से क्या हो जाएगा, तो माजरत के साथ जो ये कहता है कि मेरे बायकॉट करने से क्या हो जाएगा, हम चंद लोगों के बायकॉट करने से क्या हो जाएगा, बहुत माजरत के साथ नजर में रखना तारीख को। यही कहते थे कुछ लोग कूफे में कि कोई तो साथ है नहीं, हम चंद लोग साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन जिन चंद लोगों ने साथ दिया अल्लाह ने कैसा मकाम दिया उन्हें, कैसी इज्जत दी उन्हें, याद है वही तो पढ़ रहा हूं मैं, साबित कदम रहे चंद लोग, तारीफ किसी को माफ नहीं करती। जैसा गुजारिश करूंगा अहबाब से, ये मौका है, बेहतरीन मौका है, ना दो इसको इश्तिहार, ना खरीदो क्या हो जाएगा, आप चैनल खबरें सारी आती हैं। एक बार अल्लामा रशीद तुरावी साहब ने किया था ना ऐलान, याद है ना कि कदमों में बैठा था, हम ये नहीं चाहते कदमों में बैठे, हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं ये बिक जाए किसी और अच्छे आदमी के पास चले, हम चाहते हैं खत्म, इसको सजा मिले, इसको पता चले कि किसी कौम, वो भी कौम है गुलामा ने हैदर कर्रार से दुश्मनी लेके क्या नतीजा निकलता है। लिहाजा इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, ना करें, ना खरीदे जाए, ना दे इसको इश्तिहार, किस लिए पैसे दे रहे हैं अपने, खुश हो रहा है बगले बजा रहा है कि कुछ भी कर लो मेरे अखबार में इश्तिहार लगे बगैर या मेरा अखबार पढ़े बगैर तो इनकी सुबह होती नहीं, उसका यही दावा है कि आप कुछ भी कर लें लोगों की सुबह नहीं होती है, नहीं हमारी सुबह तो हो या ना हो तेरी शाम जरूर कर देंगे इंशाल्लाह, में यहाँ फिक्र नहीं कर, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो बस समेटता हूँ बयान, बस जो अर्थ में करने का मकसद था कि बस वो तकमील दीन और यहाँ हिफाजत दीन। कितने अफराद आए हुसैन के साथ, 72 है ना, इसे ज़्यादा नहीं, कुछ और लोग जो वाकई करबला से पहले या बाद में शहीद कर दिए गए, 103, 105, तवील तरीन रिवायत में है 189, 189 शहदा फहरिस्त मिला के सब, लेकिन 72 उर्फ़ आम में जो करबला में लड़कर शहीद हुए उनकी तादाद कितनी कही जाती है, 72 उर्फ़ आम में, तो ये 72। मगर आज पहली तारीख को मैं बच्चों के लिए पढ़ता हूँ मसाइल, कई दिन ऐसे होते हैं लेकिन आगाज़ में चाहता हूँ बच्चों से, वो ये मासूम बच्चे जो मजलिसों में आते हैं ना, आपकी गोद में बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं, आगे बैठे हैं, और मैं कभी भी इस बात पे इतराज़ नहीं करता कि बच्चों को आगे क्यों बिठाया, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश होती है कि बच्चों को आगे बिठाओ। जब तक ये बच्चे मजलिसों में आ रहे हैं ना, आपका मुस्तकबिल महफूज है, तशय्यो का मुस्तकबिल बेखौफ है, बच्चे कोई खौफ नहीं है क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। मजलिसें जब तक बच्चों से आबाद हैं आपकी, आपका मुस्तकबिल महफूज है। इसलिए मैं बच्चों को मजलिस में देख के खुश होता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल ताबना है। इसीलिए ख़ास तौर पर उन बच्चों को मुखातिब करके पढ़ता हूँ आज के मसाइल, ये ना समझना कि करबला में सिर्फ बड़े थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, करबला में छोटे छोटे बच्चों ने अपना किरदार अदा किया, छोटे छोटे बच्चे। और ये पहली तारीख मखसूस होती है हमारी फर्जंदान मुस्लिम के साथ, बेकस यतीम बे यार व मददगार गरीबुद्दयार गरीबुलवतन, जिनके बाबा के साथ बेवफाई की कूफियों ने पहले मोहब्बत का यकीन दिलाया, मोहब्बत के नारे लगाए, और जब मैदान मुश्किलात सामने आया, जब मसाइब सामने आए, जब उस वक्त का ताहूत अपनी ताकत के साथ हमला आवर हुआ, डर गए, दुबक गए, सहम गए, घरों में घुस गए और सफीर हुसैनी अकेला रह गया, पुकारता रह गया, अभी कल तो तुम मेरे साथ थे, अभी सुबह तक मेरे साथ थे, अभी तुम मेरे पीछे पीछे नारे लगाते हुए आ रहे, ये हुआ क्या, मैंने कौन सी नई बात की, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये राह हुसैनी है, मैं हुसैन का नाइब हूं, और मैंने क्या किया, उस मुस्लिम को शहीद कर दिया, उसके मासूम बच्चे जिंदान में कैद कर दिए गए, रिहाई का कोई आसार भी नजर नहीं आता। यही दोनों भाई आपस में मशवरा करते हैं, इससे तो घुट घुट कर मर जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। जिंदान मान से बात करते हैं, तारुफ कराते हैं अपना, शायद इसके इल्म में ना हो कि हम कौन हैं। और ऐसा ही था, दारोगा जिंदा को नहीं मालूम था, वो तो ये हुक्म था कि इन बच्चों को जेर ज़मीन जिंदान में डाल दें और एक वक्त इनको बस शाम को खाना दिया जाए और किसी वक्त। जब शाम को हज़्ब दस्तूर खाना लेकर आया तो बच्चों ने रोक लिया, भाई एक बात सुनता जा, ठहर जा, रुक गया, क्या बात, क्या कहना चाहते हो। कहा मोहम्मद अरबी को पहचानता है, क्या कैसी बातें करते हो, कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ, सुबह शाम गवाही देता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फिर किस तरह की बात करते, कहीं ये पूछ रहे थे तो मुसलमान है, कहा मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बता क्या उनके भाई अली को भी पहचानता है। क्या तुम अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहे हो ना, रसूल का भाई भी है, दामाद मेरा सैयदो सरदार है, मेरा मौला, मेरे दिल में अली की मोहब्बत है, और हिम्मत बढ़ी। क्या जाफर तैयार को पहचानता है, हाँ क्यों नहीं पहचानता, वही तो जाफर है जिसके बाजू कलम हो गए थे और जिसे अल्लाह ने दो पर दिए जिनके ज़रिए से परवास करता है, इसलिए जाफर तैयार है। क्या अली को भी पहचानता है, क्या तुम ये सब नाम क्यों ले रहे हो, तुम्हारा इसे क्या वास्ता, कब खानवाद रिसालत के चश्मो चराग है मुस्लिम बिन अकील के यतीम, कूफियों ने बेवफाई की है हमारे साथ, हम पर एहसान कर हमें मदीने का रास्ता बता दे, आज़ाद कर दे, जितना इनाम चाहेगा अपने चचा हुसैन से दिलाएगा। अब बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वाकई करबला हो गया है, मगर समझ गया जिंदान बाल के बच्चों को इल्म में ही नहीं है कि वाकई करबला हो गया, बच्चों को नहीं बताता, कहता है कि मैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, बैठ गया कदमों में सर रख गया, शहजादो आका जादो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें रिहा करता हूँ, तुम आज़ाद हो, दरवाज़ा खोल जाओ, मगर ध्यान रखना सुबह से पहले कूफे से बाहर निकल जाना, अगर दिन की रोशनी हो गई फिर तुम ज़रूर पकड़ लिए जाओगे और कत्ल कर दिए जाओगे। दोनों शहजादे शुक्रिया अदा करके चलने लगे, दामन थाम लिया, ठहर जाओ, दोनों शहजादों को रोक लिया, कहा देखो अब मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, अब मैं मार दिया जाऊंगा तुम्हें आज़ाद करने के बाद, मगर एक वादा करो कि क़यामत के दिन मेरी शिफात करोगे। ये होते हैं दिलेर लोग, ये होते हैं गैरतमंद लोग, ये वो जो हमीयत हमीयत होती है, जब हमें मार दिया जाऊंगा कोई परवाह नहीं, मैं कत्ल कर दूंगा, मगर वादा करो क़यामत के दिन मेरी शिफात करो। اتنا یقین ہے اسے ان بچوں کی شفاعت پر، حق شفاعت، اور بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پہ اتنا یقین ہے کہ اس کے ہاتھ تھاپ کر دونوں بچے کہتے ہیں جا تجھ سے وعدہ رہا، جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے تیرے بغیر، دونوں کے ہاتھوں کو بوسا دیا، چھوڑ دیا، بچے نکل گئے، مگر تقدیر میں کچھ اور ہے، رات بھر بھٹکتے رہے، ناکے لگے ہوئے، پابندیاں ہیں، نہیں نکل سکے، فجر کا وقت ہوا، ایک درخت کے نیچے سناٹے میں نماز پڑھے، درخت میں چڑھ گئے، اپنے آپ کو چھپا لیا، ذنِ حارث کی کنیز آئی، جوہر میں پانی بھرنے کے لیے، دیکھا پانی میں دو چاند چمک رہے، حیرت سے دیکھتی ہے درخت کی طرف، میں نے اسے حسین چہرے اس سے پہلے کبھی کوفے میں نہیں دیکھا، بچوں بٹ ڈرو، نیچے اتر آؤ، امان ہے تم کون ہو، کہاں سے آؤ، بچے کہتے مومنہ ہم پہ احسان کر دے، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، کوفیوں نے بے وفائی کیا ہے ہمارے بابا کے ساتھ، ہمارا بابا قتل کر دیا، ہم قید میں تھے، ہمیں مدینے کے راستے پر ڈال دے، گھبرا کر کہتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے، تم نکل نہیں سکتے، میری مالکن محب اہل بیت کہ چلو میرے ساتھ، کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، جلدی جلدی بچوں کو لے کر آتی ہے، اپنی مالکن کو بتاتی ہے، زوجہ حارث جو دل میں اہل بیت کی محبت رکھتی ہے خوش ہو گئی، شہزادوں کو نہلا بلایا، نئے کپڑے نیا لباس، کب سے زندان میں تھے بچے، غذا بنا کے اپنے ہاتھوں سے دے رہی ہے کہ ابھی اطمینان رکھو تم محفوظ جگہ پر آ گئے ہو، اب بے فکر ہو جاؤ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی خوف نہیں، کل ایک قافلہ جانے والا ہے اس میں چھپا کر تمہیں مدینے بھیج دوں گی، دن بھر بچوں کی خدمت کی، جب سورج ڈھل گیا شام ڈھل گئی، اب بچوں کے کوٹھری میں لائی کہ بچوں مجھے معاف کر دینا، رات بھر اس کوٹھری میں گزار لو، کیونکہ میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، کچھ پتا نہیں اس کے دل میں کیا ہو، ایسا زمانہ تھا کہ ایک گھر میں لوگ ہوتے تو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ مخبری کون کر رہا ہے، خدا بچائے ایسے زمانے سے کہ جب ایک گھر میں ہی لوگوں کو نہ معلوم ہو کہ کون مخبر ہے، کون خبریں دینے والا ہے، اندر کی باہر خبریں نکالنے والا ہے، کہا کہ کچھ پتہ نہیں، رات بھر یہاں گزار لو، تالا لگا دیا باہر سے، بچوں کو بند کر دیا، کہا اس کوٹھری میں کوئی نہیں آتا، اطمینان سے سو جاؤ، بچے سو گئے، حارث دیر سے آیا، پوچھا آنے میں دیر کیوں ہوئی، کہتا ہے کہ مسلم کے دونوں بیٹے قید خانے سے فرار ہو گئے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، سارا دن ڈھونڈتا رہا مگر ہاتھ نہیں آیا، کہا کہ کیوں، بچوں کے پیچھے پڑا ہے، اللہ رسول کی دشمنی مول لیتا ہے، چھوڑ اس کام کو، خیر کھایا پیا سو گیا، ادھر چھوٹے شہزادی کی ایک رات کے کسی پہر میں آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلاتا ہے، بھیا اٹھو، بھیا اٹھو، بھائی اٹھا، کیا بات ہے، کہ بھائی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے ابھی ابھی، پوچھتا ہے بڑا بھائی کیا خواب دیکھا ہے، کہ بھیا میں نے ابھی خواب میں رسول خدا زیارت کی، ہمارا بابا رسول خدا کی خدمت میں ہے، رسول پوچھ رہے ہیں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے، ہمارا بابا رو رو کر کہہ رہا ہے کہ خدا کے رسول میرے دونوں بچے ظالم کی قید، ابن زیاد کی قید، خدا کے رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کر کہا مسلم اطمینان رکھو، بس ابھی تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے ہیں، بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا، دونوں بھائیوں کو شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رونے لگے، جب رونے لگے صدائے گریا بلند ہوئی، حارث کی آنکھ کھلی، تلوار اٹھا کر کہتا ہے بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی، وہ مومنہ گھبرا کر کہتی ہے کہ پڑوس میں کسی کے بچے روتے ہیں، کہا نہیں یہ آواز میرے اپنے گھر سے آ رہی، تلوار لے کر اٹھا اس کوٹھری کی طرف آیا، قفل پہ تلوار ماری، تلوار سے قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے دروازے کو جب کوٹھری میں داخل ہوا تو دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے لگ کر، بس دیکھتے ہی غصے میں اس کا چہرے کا رنگ اور سیاہ ہو گیا، اور اس نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، چہرے پر ٹھوکریں، سر پر اور چہرے، اتنی ٹھوکریں ماری کہ دونوں بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے، عزاداروں بالکل یہی ہے روایت میں، ایسے ہی لکھا ہے کہ بچوں کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، ان کی ناک سے، ان کے کانوں سے خون جاری، جب بے پناہ تشدد کر چکا تو رسی سے ان دونوں کے پیر باندھے اور گھسیٹنا شروع کیا، چلاتا جاتا
चाहिए ले ले, मेहर भी बख्श दियो, इन बच्चों को ना मार। मैंने अमान नहीं सुनता कि मुझे इब्ने ज़ियाद की खुशनूदी मंजूर। गुलाम और बेटे को लेकर नहर पर आया, गुलाम को हुक्म दिया कत्ल कर दे दोनों बच्चों को। जैसे गुलाम करीब आया, बच्चे पूछते हैं कि बिलाल हबशी की कौन से है। वो चौंक कर कहता है कि तुम बिलाल को कैसे जानते हो। कहा हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, मगर सुना है कि हमारे जद रसूल खुदा का मौज़िन। हैरान होकर कहता है तुम खानदान रिसालत के चश्मो चढ़ाओ। कहा कि हाँ, रसूल हमारे जद, अली हमारे जद, जाफर तैयार हमारे जद, अकील हमारे जद, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। बस इतना सुनना था। उसने तलवार फेंकी, दौड़ा, छलांग लगा दी नहर में। ये जुल्म नहीं कर सकता खानदान रिसालत के बच्चों पर। बेटे को हुक्म दिया कत्ल कर दे। जो ही बेटा आगे बढ़ा, माँ ने चिल्ला कर कहा दूध नहीं बख्शूंगी अगर वार किया। बेटे ने तलवार फेंक दी, झुंझला कर आगे बढ़ा, तलवार से वार किया, मोमिना बच्चों पर गिर गई। मोमिना के शाने पर जख्म लगा तलवार का, जख्मी होकर एक तरफ गिर पड़ी। अब बच्चों ने देखा कि वक्त शहादत आ गया। कहते हैं बस इतनी मोहलत दे दे, दो रकात नमाज पढ़ ले। सब बच्चे सुनो, मासूम बच्चे सुनो, क्या पैगाम दे रहे मुस्लिम के यकीन का। दो रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दे। बच्चों ने नमाज शुरू की, सजदे में गए। इसने बड़े भाई की गर्दन पे शमशीर का वार किया, सर तन से जुदा हुआ, एक थैला साथ लाया था, सर को थैले में डाला, जिस्म को लहरों के हवाले किया। नहर में सफे आपने जिस्म ठहर गया। क्यों ठहर गया? इसलिए कि छोटे भाई ने बड़े भाई के खून में करवटे बदल बदल कर चिल्ला कर कहा भैया मुझे अकेला छोड़ कर ना जाना। अभी छोटा भाई बड़े भाई के खून में करवटे ले रहा, छोटे भाई का सर भी तन से जुदा किया, सर को थैले में डाला, जिस्म को लहरों के हवाले किया। दोनों बेसर के लाशें बगलगीर हुए, तहे आप बैठ गए। सुबह हुई, किसानों का गुजर हो रहा है, देखा कोई सियाह पोश बीवी बैठी है। कोई बीवी सर से पैर तक सियाह चादर में मलबूस बैठी है, पूछते हैं बीबी क्या तेरा कोई कीमती सामान गिर गया। वो कहती है हाँ, अरे हार इस मलून ने मेरे बच्चों को कत्ल करके फेंक दिया, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों के लाशें निकाल दो। ये किसान नहर में उतरे, दोनों बेसर के लाशें निकाले। अजीब मंजर देखा उन किसानों ने कि ये बीबी कभी एक के सीने पे सर रख के रोती है, कभी दूसरे के सीने पे सर रख के रोती है। इन किसानों की तरफ देखकर कहती है तुमने मेरी मदद की, मुझ मेरे साथ नेकी की, मैं तुम्हारी शिफात की जामिन हूँ, मैं कयामत के दिन तुम्हारी शिफात करूँगी। वो किसान हैरान होकर कहते बीबी आखिर आप हैं कौन जो इतने इत्मीनान से हमें जन्नत की बशारत दे रही है। नजरों से ओझल होने से पहले वो बीवी फरमाती है मैं कोई और नहीं, तुम्हारे रसूल की बेटी फातिमा, आज मेरा मुस्लिम के यतीम है। अदादारों जानते हो इस रिवायत को क्यों पढ़ता हूँ? इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे यकीन है इस पर। भला कैसे हो सकता है कि करबला में हर शहीद के सरहाने फातिमा आए, अकबर के बरछी लगे फातिमा मौजूद हो, अब्बास के शाने लगे फातिमा मौजूद हो, अली असगर के तीर लगे फातिमा मौजूद हो, हुसैन का कमर काटा जाए फातिमा रोने के लिए मौजूद हो। भला कैसे हो सकता है कि मुस्लिम के यतीम कत्ल किए जाए और हुसैन की मां का मातम कर ले। ظلموا أيام منقلب ينقلبون